તારીખ 1-2-1993 શ્રી સમયસર ગાથા 50-55 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 80
શ્રી સમયસર પરમાગમ જીવ જીવ અધિકાર ગાથા 50-55 ની ટીકા 26 બોલ થયા છે. પજીવના ભેદ કેવા કેવા છે કે જેથી પજીવમાં જીવનો અભ્યાસ ન થાય, ભ્રમણા ન થાય કે આ જીવ છે. એટલા માટે 27મો બોલ કહે છે, ચારિત્ર મોહ કે વિપાક કી ક્રમશઃ નિવૃત્તિ જિનકા લક્ષણ હૈ એસે જો સંયમ લબ્ધિ સ્થાન હૈ વે સર્વહી જીવ કે નહીં હૈ ક્યોંકિ વો પુદ્ગલ દ્રવ્ય કે પરિણામમય હોને સે અપની અનુભૂતિ સે ભિન્ન હૈ. ક્યા કહા કે ચારિત્ર મોહ કે વિપાક કી ક્રમશઃ નિવૃત્તિ, ચારિત્ર મોહ નિવૃત્ત હોતા જાતા હૈ ઓર ઓ કભી એક સાથ નિવૃત્ત નહીં હોતા. દર્શન મોહ એક સાથ નિવૃત્ત હોતા હૈ, ચારિત્ર મોહ ક્રમશઃ નિવૃત્ત હોતા હૈ ધીરે ધીરે. તો જ્યો જ્યો ચારિત્ર મોહ કા અભાવ હોતા હૈ, નિવૃત્ત હોતા મેને અભાવ હોતા હૈ તો વહાં ઉસકા ઇતના સંયમ ગિનને મેં આતા હૈ. સંયમ હૈ વો અસ્થિ સૂચક પરિણામ હૈ ઓર ચારિત્ર મોહ કા અભાવ હૈ વો નાસ્તિ સૂચક પરિણામ હૈ. એક હી પરિણામ કે દો નામ હૈ. તો જ્યો જ્યો સ્વરૂપ મેં લીનતા બઢતી હૈ ઓર કષાય કા અભાવ હો જાતા હૈ ઉતના ઉતના ચારિત્ર મોહ કી નિવૃત્તિ હો જાતી હૈ ઓર ઉતને ઉતને સંયમ હૈ વો સંયમ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, લબ્ધિ મેને પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. તો જીતને જીતના રાગ ગયા, જીતના જીતના રાગ કા વિષય છૂટ ગયા, ઉતના ત્યાગ હુઆ. જીતના બાહ્ય પદાર્થ કા ત્યાગ હુઆ ઉતના બાહ્ય સંયમ ગિનને મેં આતા હૈ. સંયમ કે તીન ભેદ, પરમાર્થ સંયમ હૈ વો જીવ કે શુદ્ધ પરિણામ હૈ ઓર વ્યવહાર સંયમ મેં ત્યાગ કે શુભ પરિણામ હૈ ઓર ઇસકે નિમિત્તભૂત જો ઇન્દ્રિયો કે વિષયો કા ત્યાગ હોના ઉસકો ભી દ્રવ્ય સંયમ કહેને મેં આતા હૈ. એસે ભાવ સંયમ, દ્રવ્ય સંયમ ઓર પરમાર્થ સંયમ, એસે સંયમ કે તીન ભેદ હૈ. તો જીતને સંયમ કી પ્રાપ્તિ હુઈ વો મૂળ જીવ કા સ્વરૂપ નહીં હૈ, ક્યોંકે વો એસા અનાદિ અનંત તો નહીં બનતા. સ્વભાવ ભી જીવ કા સ્વરૂપ નહીં હૈ, પરદ્રવ્ય કા ત્યાગ ભી જીવ કા સ્વરૂપ નહીં હૈ. પરદ્રવ્ય કા ત્યાગ હોને સે મુનિરાજ હૈ વો સર્વસંગ પરિત્યાગી દિખને મેં આતે હૈ. તો જીવ કા સ્વરૂપ નહીં હૈ, જો મુનિ કા સર્વસંગ પરિત્યાગ રૂપ જો ભી દિખાવ હૈ વો કોઈ જીવ કા મૂળ સ્વરૂપ નહીં હૈ. ये सब पुद्गल के परिणाम हैं. जितने भी पर पदार्थ के का त्याग होता है, सामने चारित्र मोह का अभाव होता है, ये सब जीव का मूल स्वरूप नहीं है. जीव का मूल स्वरूप तो परमार्थ संयम से भी कुछ पार है. શુભ પરિણામ ઓર પુદ્ગલ દ્રવ્ય કે પરિણામ ત્યાગ કે વો તો નહીં, લેકિન જો શુદ્ધ પરિણામ હૈ ઉસસે ભી પાર હૈ, બહોત દૂર હૈ. વો 27વા સંયમ લબ્ધિ વાલા. ઇસલિયે સંયમ લબ્ધિ મેં ભી, સંયમ કી પ્રાપ્તિ મેં ભી અહમ ભાવ કરને યોગ્ય નહીં હૈ કે મેરા સંયમ બહોત હૈ, મેં मेरा जैसा कोई संयम पालने वाला नहीं मिलता। ये तुमको जीव का स्वरूप का, तेरा स्वरूप का भी तुमको पता नहीं है, ऐसी बात है। मूल स्वरूप नहीं है, जीव का मूल स्वरूप अनादि अनंत है, और परमार्थ संयम छठे गुण स्थान से ध्यान गुण स्थान से गिना जाता है, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में। तो कोई जीव नया पैदा होता है क्या छठे गुण स्थान में? कैसा नहीं, जीव का मूल स्वरूप क्या है वो बात चलती है, कि जीव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, जिसका अवलंबन लेने योग्य है, जिसमें अहमपना करने योग्य है, ऐसा अपना स्वरूप कौन सा है, कैसा है, वो बात चलती है। नहीं, संयम रूप नहीं है, संयम असंयम कोई लागू ही नहीं होता उसको क्योंकि असंयम का प्रतिपक्ष भूत संयम है। संयम क्या चीज है? असंयम का प्रतिपक्ष भूत है। ऐसा द्वंद्व मूल स्वरूप में नहीं है, वो तो निर्द्वंद्व स्वरूप है। ऐसा नाम दिया जाता है कि जीव परमार्थ संयम स्वरूप है, फिर भी ऐसा नाम उसको लागू पड़ता नहीं है। वो कुल 34 गाथा लिया कि नहीं रात को, कि उसको त्याग कहने में आता है, फिर भी त्याग का नाम उसको लागू पड़ता नहीं है। एक ही जीव को द्रव स्वरूप भी कहते हैं, उसी जीव को गुण स्वरूप भी कहते हैं, उसी जीव को पर्याय स्वरूप भी कहते हैं। द्रव स्वरूप कहते हैं तो जीव एक है, गुण स्वरूप में जीव में अनेकता पाई जाती है, और पर्याय में तो अनेकता और अनित्यता दोनों पाई जाती है। नित्य ऐसे जीव में एक, अभेद नित्य ऐसे जीव में अनित्यता और अनेकता भी देखी जाती है। और ऐसा जीव है ऐसा कहने में आता है, तो कहने में कोई बाधा नहीं है, सोच समझ के कहना है। वस्तु दर्शन होवे और कुछ भी कहे तो निर्दोष है, मिलना परस्पर विरोधाभास हुए बिना रहेगा नहीं। अठाईस, पर्याप्त एवं अपर्याप्त, ऐसे बादर सूक्ष्म, एक इंद्री, द्वि इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री, संगनी असंगनी, पंचेंद्रिय जिसका लक्षण है, ऐसे जीव स्थान है, वे सर्व ही जीव के नहीं है। नाम दिया जीव स्थान और जीव के नहीं है, पुद्गल के हैं। क्या नाम, क्या 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 कहा? 14 गुण स्थान। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय और संगनी पंचेंद्रिय, छह और सूक्ष्म सात हुआ, और उसका पर्याप्त अर्याप्त पर्याप्त ऐसा दो भेद लेकर के 14 हो गया। सबों का पर्याप्त पहले अवस्था होती है, फिर बाद में पर्याप्त होती है, बाद में पर्याप्त होती है सातों की। तो ऐसा 14 जीवस्थान हुआ। ये 14 जीवस्थान जो है, ऐसा जीव का स्वरूप नहीं। एकेंद्रियपणा जीव का स्वरूप नहीं, पंचेंद्रियपणा भी जीव का स्वरूप नहीं, ये मनुष्यपणा भी जीव का स्वरूप नहीं है। जीव एक इंद्री है, जीव दो इंद्री है, ऐसे बोलने में आता है, वास्तव में जीव का मूल स्वरूप नहीं, ऐसा जीव नहीं है, मूल स्वरूप से ऐसा जीव नहीं है। तो फिर जीव कैसा है? कि जीव अतीन्द्रिय स्वरूप है, एक इंद्रिय आदि स्वरूप तो नहीं, किंतु जीव अतीन्द्रिय स्वरूप है। इसलिए सब पुद्गल के परिणाम है, एक इंद्रिय आदि जो है वे सब पुद्गल के परिणाम है। ये 28वां आखिर का 29 का है। मिथ्या दृष्टि साशासन सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत गुणस्थान, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्वकरण, उपशमक तथा क्षमक दोनों प्रकार के, अनिवृत्ति वादर सांप्राय उपशमक तथा क्षपक, ये उपशमक तथा अनिवृत्ति वादर सांप्राय और उपशमक 11वां तथा क्षपक 12वां और सूक्ष्म संप्राय उपशमक तथा क्षपक दोनों में उपशमक क्षमक ले लेना, दो श्रेणी है ना। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोगी केवली और अयोगी केवली, जिनका लक्षण है, जिनका स्वरूप है, ऐसे जो 14 गुण स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है। ये 14 गुण स्थान है वो पुद्गल के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। देखिए मिथ्या दृष्टि वो जीव का तो स्वरूप नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टिपणा वो भी जीव का स्वरूप नहीं, क्योंकि नया पैदा होता है। और जीव के मूल स्वरूप को देखा जाए तो उसमें सम्यक दृष्टिपणा मिथ्या दृष्टिपणा जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें सयोगी केवली अयोगी केवली जैसा कुछ है ही नहीं। जीव सयोगी केवली नहीं होता, जीव अयोगी केवली भी नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा अनादि अनंत है, ऐसी बात है। योगी केवली का तो काल ही बहुत थोड़ा है, क्या इतना जीव है क्या? आखिर का जो सर्वशुद्ध गुण स्थान है वो तो 14वां गुण स्थान है, लेकिन इसका काल कितना? बहुत कम काल है, असंख्यात समय है, थोड़ा लघु बिल्कुल अ उ लु रु उतना, चार अक्षर बोले बस ये 14 गुण स्थान पूरा हो गया। जीव का स्वरूप नहीं है कि सभी प्रकार की 14 गुण स्थान से सभी इसके पार की जो कोई चीज है वो जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप ये 14 गुण स्थान नहीं है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन के पहले स्वरूप निश्चय होता है, स्वरूप का प्रतिभास होता है, स्वरूप का पहचान होता है, उसमें ऐसा स्वरूप पहचाना जाता है कि मेरा स्वरूप 14 गुण स्थान से भी पार है। बाद में उसको सम्यक दर्शन होता है, ऐसी पहचान के बाद उसको सम्यक दर्शन होता है, इसके पहले सम्यक दर्शन भी नहीं होता। लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं है, सम्यक दर्शन होवे वो जीव का स्वरूप नहीं है। 14 गुण स्थान से आगे जा करके सिद्ध अवस्था होगी, वो भी जीव का स्वरूप नहीं है, वो भी भेष है। 14 गुण स्थान तो इनके भेष है, बदलते 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 आखिर में क्या हुआ जो नहीं बदले, ऐसा कि सादी अनंत सिद्ध अवस्था होगी, लेकिन वो भी जीव का मूल स्वरूप नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि वो नया पैदा होता है, सिद्ध पद नया पैदा, और जीव नया पैदा नहीं होता कभी, मूल स्वरूप से जीव कभी नया नहीं पैदा होता। हाँ, 14 गुण स्थान से पार है ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा अपना स्वरूप स्वरूप निश्चय के काल में मालूम पड़ता है। ये आचार्य महाराज बताते हैं कि निर्णय करो, तुम निश्चय तो करो, ये समय सार का स्वाध्याय करके सबसे पहले निश्चय तो करो, स्वरूप तुम्हारा कैसा है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध नहीं क्या, सिद्ध समान, सिद्ध सदृश, समान मैंने सदृश, लेकिन उपस्वरूप अलग है, सिद्ध पद अलग है, क्योंकि सिद्ध पद सादी अनंत है और अपना स्वरूप अनादि अनंत है। कितना फर्क पड़ गया कि अनंत काल तो जो था ही नहीं, अनंत काल तो था ही नहीं वो, ऐसा पहले ज्ञान में आवे और स्पष्ट अनुभवान से उसकी प्रतीति हुए, फिर निर्विकल प्रतीति के काल में अनुभव हुए, तभी धर्म की शुरुआत अवस्था में होती है, तभी अवस्था में धर्म की शुरुआत होती है, इसके पहले तो धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। ये पहचान करने लायक जो कोई अपना चीज है, स्वरूप है, वो ऐसा 14 गुण स्थान से भी पार है। हाँ, 751 में दूसरा वो स्वरूप नहीं, उसमें ऐसा ऐसा जीव पहचानने में आता है, तो मेरा स्वरूप 14 गुण स्थान वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं तो अनादि से हूं ना, 14 गुण स्थान तो मिथ्यात्व गुण स्थान अनादि से है, लेकिन वो तो जीव का स्वरूप से सदृश भी नहीं है, वो तो बिल्कुल भी सदृश है, उल्टा है, और वो भी शांत होने वाला है, वो भी शांत होने वाला है, मिथ्यात्व शांत हो जाएगा और कभी फिर पैदा होगा नहीं, तो ऐसा जीव का स्वरूप हो ही नहीं सकता, शांत हो जाए वो जीव का स्वरूप नहीं। जीव तो अजन्मा और अमर तत्व है, जन्म भी नहीं लिया और मरने वाला भी नहीं है। 14 गुण स्थान जो है वो पुद्गल के परिणाम है, जीव के परिणाम, जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए ये पुद्गल के परिणाम है और मेरी अनुभूति से वो भिन्न है, मेरी अनुभूति में ऐसा जीव नहीं आया। क्या कहते हैं, मेरी अनुभूति में ऐसा जीव आया ही नहीं, मेरी अनुभूति में जीव आया वो 14 गुण स्थान से पार वाला आया है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं, वे सब जीव के नहीं हैं, जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है जो अनादि अनंत है, चेतना स्वरूप अनादि अनंत है, वो जीव का स्वरूप है, चैतन्य शक्ति मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसा जीव का स्वरूप है। बस ये उसी को परमार्थ कहा है, ये परमार्थिक जीव का स्वरूप कहा, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र कह करके मूल स्वरूप को ही बताया है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, वो जो गाथा कही उस पर एक और श्लोक की रचना टीकाकार आचार्य महाराज ने की है। वर्णाद्या वा राग मुहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वैवासि पुंसः तेन एव तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टास्य द्रष्टुम् एकं परं स्यात्। जो वर्णादिक अथवा मुहादिक भाव कहें वे सभी इस पुरुष नाम आत्मा से भिन्न है। वर्ण तो पुद्गल के होते हैं और राग जीव के विभाव विकार फॉरेन एलिमेंट है, वो मूल स्वरूप में है ही नहीं, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को क्या अंत तत्वतः पश्यतः, जो अंतर्दृष्टि से जीव के मूल स्वरूप को देखने वाले हैं उसको तो यह सब दिखाई नहीं देते, ये सब भेद प्रभेद दिखने में नहीं आते, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है, सर्वोपरि तत्व है, एकम परम दृष्टम स्यात्, एक मात्र अभेद तत्व जो है जैसा है वैसा दिखने में आता है, जैसा है वैसा कहना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई भेद ले ले वे तो एक भेद मात्र वो नहीं है। केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है, वो सर्वोपरि तत्व है। कैसा दिखाई देता है कि मैं केवल चैतन्य भाव स्वरूप, चैतन्य स्वभाव स्वरूप अभेद रूप हूँ, मेरे में कोई भेद नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, कोई धर्म का भेद मेरे में अनुभव में आता नहीं है, ऐसा मैं अभेद स्वरूप हूँ। हाँ, ऐसा अभेद स्वरूप हूँ कि अभेद का भी भेद इसमें नहीं है, ठीक, और कोई भेद तो नहीं है, लेकिन अभेद का भेद भी मेरे में नहीं है, ऐसा अभेद है। अभेद कहने में आते हुए भी अभेद का भेद उसमें नहीं है, नाम देने में आता है अभेद, लेकिन वो नाम भी लागू पड़ता नहीं है, क्योंकि वो भेद की अपेक्षा रखता है, अभेद भी भेद की अपेक्षा रखता है। सिद्धपणा संसारीपणा की अपेक्षा रखता है, मोक्षपणा बंध की अपेक्षा रखता है, ऐसी कोई अपेक्षा वाला मैं उसके नाम सर्वोपरि है, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, इसकी बड़े बराबरी विश्व में किसी से हो सकती नहीं है, इसलिए उसको अनुपम पदार्थ भी कहने में आता है। किससे उपमा देवे, कि जिसकी भी उपमा देते हैं वो छोटा पड़ता है, जिसकी भी उपमा देते हैं वो छोटा पड़ता है। जैसे आत्मा ज्ञान का सागर है, आनंद अमृत का सागर है, लेकिन सागर को नीचे तलिया होता है, बॉटम उसको जमीन होती है, वहां स्वभाव को हद होती नहीं, सागर को नीचे हद होती है, जमीन होती है, पानी के नीचे जमीन होती है, और स्वभाव को तो हद होती नहीं, इसलिए महासागर है, समुद्र है, उसका भी उपमा उसको पूरी लागू होती नहीं है। परमार्थ न अभेद ही है, इसलिए इस दृष्टि से देखने पर, देखो परमार्थ नहीं कहा, निश्चय नहीं के नहीं करके, नहीं कह करके परमार्थ नहीं कहते हैं, जयचंद जी भावार्थ में परमार्थ न अभेद ही है, इसलिए इस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देता। ये परमार्थ नहीं से देखने से कोई भेद आत्मा में दिखाई देता नहीं है। इस नई की दृष्टि में पुरुष चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है, पुरुष नाम आत्मा, इस दृष्टि से, इस नई की दृष्टि में तो आत्मा है वो केवल चैतन्य मात्र ही एकाकार दिखाई देता है, इसलिए वे समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुष से आत्मा से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न ही है। ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत जो भाव है, एक वर्ण से लेकर पुद्गल के पर्याय, यहाँ से लेकर 14 गुण स्थान पर्यंत जितने भी भेद प्रभेद कहें, उनका स्वरूप पर जो भाव है, उनका स्वरूप, वो सभी जितने भेद प्रभेद हैं उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमठसार आदि ग्रंथों से जान लेना। ये करणानुयोग के ग्रंथ में आएगा, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, ये सब भेद करणानुयोग में आता है। यहाँ तो द्रव्यानुयोग का विषय चलता है, करणानुयोग का नहीं चलता है, इसलिए आचार्य महाराज ने ज्यादा विस्तार नहीं किया।
परमार्थ नहीं तो अध्यात्म में आवे,
हाँ हमने परमार्थ नहीं अध्यात्म का विषय है, इसलिए परमार्थ नहीं कहा। आगम में निश्चय व्यवहार ऐसा कहते हैं, ये परमार्थ नहीं अध्यात्म का विषय है, पर उसका नाम दिया परमार्थ नहीं। सही बात है, ऐसे ये 50 से 55 गाथा पूरी हुई है। अब आगे લેની હૈ उसका एक वेद प्रवेद से सब गाथा लिखी है। जिनेश्वर देव ने ये सब वेद प्रवेद को अचेतन कहा है। आखिर गाथा में 68 में बोला, ये गुणस्थान आदि मोहन कर्म से हुआ है। जिनेन्द्र देव ने तो उस सबको पुद्गल को बताया, पुद्गल का बताया है। अब जो है कर्ता कर्माधिकार की शुरू की गाथा ले में। अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आश्रव में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभ की दो गाथा साथ में है। कर्मों का बंध करता है यह गाथा द्वारा कहते हैं। देखिए थोड़ा बात सूक्ष्म वो है कि विषय चलेगा ये भेद ज्ञान का, आत्मा और आश्रव भिन्न भिन्न है। आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न है ऐसा नहीं कहा, आत्मा और बंध भिन्न भिन्न है ऐसा नहीं कहा। आचार्य महाराज ने आत्मा और आश्रव भिन्न है ऐसा कहा, क्योंकि बंध तो पीछे से होता है, पहले क्या होता है तो वहां से काटो उसको, कहा फिर वो तो बंध तो क्यों में खड़ा है, क्या आश्रव के बाद बंद खड़ा है? आश्रव को ही आप आने नहीं देते तो फिर पीछे वाले, आगे वाले को नहीं आने दे तो पीछे वाला तो आएगा ही नहीं। जहां से उद्भव होता है, आने का होता है, फिर वो जम जाएगा उधर बंद होने के बाद। लेकिन आने ही नहीं देवे, प्रवेश ही नहीं करने देवे तो ठहरेगा कहां से? जैसे कोई अनिच्छित तत्व है, अनिच्छित आदमी है, हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में ठहरे नहीं, तो पहले क्या करेंगे कि उसको आने मत दो, वो आते हैं वहीं उसको रोक दो, घर में आवे और निकाले, ये तो एक बड़ी उपाधि हो जाएगी क्योंकि फिर से कब्जा हो गया, पजेशन का राइट हो गया, फिर ये झगड़ा दूसरा हो जाएगा क्या कोई अपनी जगह में आ जाता है और पजेशन लेकर बैठ जाता है, कब्जा लेकर बैठ जाता है, तो ये केस दूसरा चलता है। और आने का कोशिश करता है, इसके सामने हम कोई आवाज उठाते, प्रतिकार करते, वो झगड़ा दूसरा हो गया। होता कि नहीं होता? अलग अलग होता है, एक होता है क्या? न्याय के प्रकरण में भी ये दो अलग अलग पहलू है। तो अगर संसार से बचना है तो आश्रव को रोको, बंध स्वयं रुक जाएगा, बंध को रोकना पड़ेगा नहीं। ये बात है, क्या सूक्ष्मता है देखो, अधिकार की सूक्ष्मता क्या है। आश्रव से भिन्न जानो, बंध से भिन्न जानो ऐसा नहीं कहा, आश्रव से भिन्न जानो उसको। देखो जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को नहीं जानते, क्या कहा? आश्रव के और आत्मा के अंतर को, तफावत को, भेद को नहीं जानता, तब तक वो अज्ञानी रहता है। आश्रव से भिन्न जान लिया तो ज्ञानी हुआ, ऐसा कहते हैं क्या? जैसे अपन ये प्रयत्न के काल में दो भाग भेद लेते हैं कि जो राग हो गया, जो विभाव हो गया, दोष हो गया, फिर उसको उसका उसको ज्ञान में लेना, वो विचार ज्ञान में आएगा क्या? वो क्या हो जाएगा? विचार ज्ञान में आएगा। और जो चालू है उसको देखो तो वो अवलोकन में आएगा। क्या आएगा? अवलोकन और विचार का अंतर है ना। तो जो हो गया सो हो गया, बाद में उसका विचार करने से कोई उसमें फेरफार, जो हो गया उसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं है। जैसे एक कांच का, कांच की चीज है, गिलास है, जार है, कुछ भी है, गिर गया हाथ में से, हाथ में से गिर गया, वो फूट गया, फूट गया, वो नहीं फूटा होगा क्या? जो फूटा वो नहीं फूटा नहीं होगा, लेकिन पहले से सावधानी रखे तो फूटे ही नहीं। तो ये जो तो उसका नुकसान हो ही चुका, उसको होते वक्त जागृत हुआ तो उसमें फेर पड़ता है, और फिर वो जागृति ऐसे हो जाएगी कि होने से पहले जागृत हो जाएगा जी। क्या? जो होने के काल में जागृत होगा उसकी जागृति अधिक तीव्र हो जाएगी, तो होने से पहले वो जागृत हो जाएगा, होने ही नहीं देगा, उसको उत्पन्न ही नहीं होगा, उसको संवर कहने में आता है। हाँ, तो उसी वक्त ज्ञान, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान भाव उस वक्त है कि नहीं है मौजूद? जिस वक्त रागादि दोष परिणमन चालू जिसका हो, चलता चालू परिणमन हो, उस वक्त ही ज्ञान का परिणमन चालू है कि नहीं है? कि नहीं है? तो जागृति ज्ञान में आने से वो जो रागादि चालू है, उसका रस है, उसकी शक्ति है, वो टूट जाएगी। क्या? राग पहले कभी नहीं टूटता, नहीं जाता, पहले राग की ताकत टूट जाती है, फिर राग जाता है। ये राग जाने का क्रम है क्या? ये राग मिटने का क्रम है, राग का अभाव होने का ये क्रम है। तो आत्म जागृति आती है मुमुक्षु की भूमिका में, तो पहले अवलोकन में आता है। इसको आत्म जागृति नहीं आती, वो वास्तव में तो मुमुक्षु की भूमिका में आया ही नहीं। क्या? आया ही है, नाम रख लिया है, आया नहीं है। और वो जब अपने प्रैक्टिस में बहुत सफल हो जाता है, मैंने एक्सपर्ट हो जाता है, पारंगत हो जाता है, तो उतना जागृत रहता है कि वो नए जो आने वाले आश्रव थे वो आवे ही नहीं, पहले से ही अटक जाते हैं, रुक जाते हैं वो, उसको संवर कहने में आते हैं। हाँ, तो जो विभाव अटक जाता है, वो थंबी मैंने अटक जाता है, समयसार की स्तुति की बात करना, विभाव से अटक जाता है, थंब जाता है, तो पहले से जागृत हो गया, उसको संवर हो गया कि अपना परिणाम तो स्वरूप प्रति दौड़ने लगा, विभाव उत्पन्न ही होने नहीं दिया, थंब जाना मैंने, रुक जाना, अटक जाना, ऐसा समयसार है। समयसार कैसा है? कि विभाव से जीव को, जिसका अवलंबन लेने से विभाव से रुक जाए और स्वभाव में परिणति लग जाए, ऐसा समयसार आत्मा है। समयसार की प्रशंसा है, स्तुति है। यह जीव आश्रव के और आत्मा के अंतर को नहीं जाने, मैंने दोनों का स्वाद अलग अलग है, अनुभव के काल में दोनों का स्वाद अलग अलग है, ज्ञान का आस्वाद जैसा है वैसा आश्रव भाव का आस्वाद नहीं है, जैसा आश्रव का अनुभव है ऐसा ज्ञान का अनुभव नहीं है। ऐसा जब तक नहीं जाने वहां तक वो अज्ञानी रहता है, वहां तक क्या कि वो अपना स्वरूप जानता है, आश्रव को ही अपना स्वरूप जान लेता है। और दोनों को भिन्न भिन्न जानने में, दोनों का अंतर जानने में, क्या अंतर जानने में आता है कि आश्रव पर है और ज्ञान स्व है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं आश्रव स्वरूपी नहीं हूँ, ऐसा जानने में आता है। तो ये पराई चीज हो गई, आश्रव है वो पराई चीज हो गई। ऐसा अज्ञानी रहता हुआ क्या होता, क्या होता है कि वो आश्रवों में लीन हो जाता है, वो आश्रवों में लीन हो जाता है। और वो कर आश्रमों में लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है, उसको अनेक प्रकार के कर्म बंधन होता है और इस कर्म बंधन के फल में वो संसार में परिभ्रमण करता है। यह बात गाथा द्वारा कुंदकुंत आचार्य महाराज कहेंगे, जाव नवेदी विशेषंतरम तो आदासवाणम दोनम भी दोनम पे अन्नाने तावतु तावदु सो कोहाविदुषु वट्टदे जीवो कोहाविदुषु वट्टन्तस्स तस्स कमस्स संचो हुदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सबदर्शिः
आत्मने श्रवतमनो
कहा कि जीव को बंधन क्यों होता है, जिस बंधन के वशात वो पराधीन होकर दुखी दुखी हो जाता है, जीव को बंधन क्यों, इसका विज्ञान कहते हैं, इसका जो साइंस है वो कहते हैं कि जीव जब तक आत्मा और आश्रम इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादिक आश्रमों में प्रवर्तता है, क्रोधादिक आश्रमों में प्रवर्तता है। क्रोधादिक में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है, क्रोधादिक में प्रवर्तने से फिर उसका उसको संचय होता है, संचय मैंने इकट्ठा होता है कर्म। और वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है, जो सर्वज्ञ देव है वितराग जैन परमेश्वर है, जिनके एक समय के ज्ञान में लोकालोक की जानकारी हो जाती है, फिर भी वो निरवशेष अंतर्मुख उपयोग में ही विराजमान रहते हैं, ऐसा जिनका अचिंत्य स्वरूप है, कैसा है सर्वज्ञ देव का स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने कर्म का बंधन उस प्रकार से दर्शाया कि जीव क्यों कर्म बंधन होकर के दुखी हुआ, संसार में जीव दुखी क्यों है कि उन्होंने आश्रव, जीव ने आश्रव के काल में ही उसका अपने से भिन्नपना नहीं जाना, यही कारण है। अज्ञानी कहाँ से हुआ कि आश्रव में अपनत्व कर लिया इसलिए अज्ञानी हो गया, तो अज्ञानी होने से उसको कर्मबंध हुआ, कर्मबंध होने से वो दुखी हुआ, बस ये बात है। ये गाथा दोनों बहुत सुंदर गाथा है, थोड़ी ये प्रयोग की गाथा है। बहुत सी गाथाएं उन गाथाओं में भेद ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, इस सभी अधिकार में आचार्य महाराज ने भेद ज्ञान के प्रयोग के सूक्ष्म सूक्ष्म पहलुओं को प्रदर्शित किया है, प्रसिद्ध किया है। क्या भेद ज्ञान के भी बहुत से पहलू हैं, तो किस प्रकार से वो भेद ज्ञान होता है उसके पहलुओं को दर्शाने का यही कारण है कि अगर किसी को प्रयोग करना है तो वो कर सके, भेद ज्ञान का प्रयोग कर सके। ये भेद ज्ञान का प्रयोग का फल निर्विकल्प शुद्धोपयोग है। क्या निर्विकल्प शुद्धोपयोग है? जिसको सम्यक दर्शन के काल में निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है उसके पहले उसको स्वविकल्प दशा में भेद ज्ञान का प्रयोग चलता है। क्या चलता है? भेद ज्ञान का प्रयोग चलता है। और फिर ये शुद्धोपयोग छूट जाने से स्वविकल्प दशा में ज्ञान परिणति ज्ञान धारा चलते हुए भेद ज्ञान का प्रयोग चालू रहता है। और यही भेद ज्ञान का प्रयोग चालू रहने से बार बार साधक जीव को सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा को शुद्धोपयोग होने लगता है। ऐसा बार बार शुद्धोपयोग होने से आत्मा में वीतरागता है वो घनिष्ठ होती जाती है, और ऊपर ऊपर के गुण स्थान में आरूढ़ होने से आखिर में सिद्ध सिद्ध पद तक आत्मा पहुंचता है। तो संवर अधिकार में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने एक श्लोक बनाया कि भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, जो कोई सिद्ध आत्मा ये हुए हैं हो रहे हैं वर्तमान में और भविष्य काल में अनंत होंगे, अनंत हो चुके अनंत होंगे, वर्तमान में कुछ हो रहे हैं, 6 महीना 8 समय में 608 सिद्ध पद में जाते हैं, निर्वाण पद में। तीनों काल के सिद्धात्मा भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो परिभ्रमण संसार में करते हैं, संसारी और सिद्ध दो ही भेद है, जीवों का दो भेद है, एक संसारी और एक सिद्ध। तो दूसरे जो भी संसार में हैं वो भेद विज्ञान का अभाव से हैं। भेद विज्ञान तस्य अभावतः बद्धा, तस्य मैंने भेद विज्ञान का अभाव से जो बंधन में पड़े हैं, बद्धा ये किल केचन, जो भी बंधन में वो भेद विज्ञान के अभाव के कारण से है। इसलिए विधि का मूल स्वरूप प्रधान स्वरूप यानी राजमार्ग रूप जो विधि है वो मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान की है। इसलिए भेद विज्ञान करना, क्या करना? भेद विज्ञान करना, यही कर्तव्य है। सारा समय सार में सभी अधिकार में सभी प्रकरण में आचार्य महाराज ने भेद विज्ञान की बात रखी है। एक भी अधिकार ऐसा नहीं है कि जिसमें भेद विज्ञान की बात नहीं चली हो। मोक्ष अधिकार है ना, वो तो निर्वाण का अधिकार है, मोक्ष में ने निर्वाण, तो वहां भेद विज्ञान की बात चलाई। क्या वो प्रज्ञा क्षणी वाला जो बात चली है भेद विज्ञान की, वो मोक्ष अधिकार में चली है। आचार्य महाराज ने ऐसा क्यों किया? मोक्ष अधिकार में तो मोक्ष की बात करनी चाहिए थी क्या? आचार्य महाराज कहते हैं कि हम मोक्ष की बात करते, तुम सुन तो सही, मोक्ष का कारण होगा तब तो मोक्ष होगा ने, सीधा तो मोक्ष होने वाला नहीं है, तो पहले तुम मोक्ष के कारण को तो समझ। तेरे लिए मोक्ष का कारण जरूरी है, मोक्ष तो बाद में होगा, स्वतः ही होगा, स्वयं हो जाएगा, करना पड़ेगा नहीं। तो इसलिए वहां भी भेद ज्ञान की चर्चा चली है। सारे समय सार में भेद विज्ञान का ही ये ग्रंथ है। अगर इसका कोई दूसरा नाम दिया जाए तो ये भेद विज्ञान का ग्रंथ है। भेद विज्ञान में आश्रय होता है समय सार का। क्या? भेद विज्ञान में आश्रय होता है समय सार का। तो ये भेद विज्ञान का आश्रय भूत तत्व का नाम दिया है। क्या नाम दिया है शास्त्र का? भेद विज्ञान का आश्रय भूत तत्व का। अगर विधि विषय एक नाम देना होता तो भेद विज्ञान देना पड़ता। ऐसा सारा ग्रंथ में भेद विज्ञान की प्रधानता बहुत है। ये जीव और अजीव जो 29 बोल चले ने, क्यों ये 29 बोल चले? भेद विज्ञान करने के कारण। इतने सब अजीव है, तुम इसे भिन्न हो, जीव हो ये भिन्न है, ये भेद विज्ञान है। आखिर तक यही बात चली है। और पहले अधिकार का नाम दिया जीव अजीव, क्यों? कि जीव से अजीव भिन्न है, इसका ज्ञान कराना है। जीव है वो अजीव नहीं, अजीव है सो जीव नहीं। जो आचार्य महाराज का दृष्टिकोण है वो बदलता नहीं है। सारे ग्रंथ में कहीं भी एक ही दृष्टिकोण से सारा शास्त्र लिख दिया है। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर मैंने भिन्न लक्षण न होने से उनके भेद को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपणे से प्रवर्तता है। क्या कहते हैं? पहले उल्टी बात समझाने के दृष्टांत सुलटा लिया है जैसे करके, जैसे मैंने दृष्टांत वैसे सिद्धांत कहेंगे। तो क्या कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान दोनों में तादात्म सिद्ध संबंध है, तद आत्म रूप है। ज्ञान और आत्मा तदात्म रूप है, एक आत्म रूप है, दो नहीं है। ज्ञान मैंने आत्मा, आत्मा मैंने ज्ञान। क्या कराना है? अब क्या बात चलेगी? भेद विज्ञान की बात चलेगी। किस तरह से भेद विज्ञान सिखाते हैं? ये प्रयोग सिखाते हैं। क्या? भेद विज्ञान का प्रयोग सिखाते हैं कि देख, तेरे आत्मा में वर्तमान में जिससे जानने में आता है ऐसा कोई ज्ञान है क्या कि जिसे तू जान रहा है? कहे ज्ञान है। ज्ञान क्या करता करता है? जानने का काम करता है। वो ज्ञान और आत्मा दो नहीं है। ज्ञान है सो ही आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिए वो तादात्म सिद्ध संबंध होने से, आत्मा रूप संबंध होने से उनके भेद को, उनके पृथकत्व को, उनके जुदापना को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपणे से प्रवर्तता है। क्या होता है कि ज्ञान में स्वरूप मैं हूँ, उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। मेरा अनुभव बोलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और वहाँ ज्ञान में आत्मपणे से प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं किया गया है, उसका निषेध करने में
नहीं आया।
ज्ञान है सो मैं हूँ, वो तो आदर का विषय है, विधि का विषय है, निषेध का विषय नहीं है। ये भेद विज्ञान स्वयं विधि निषेध रूप है। क्या? भेद विज्ञान स्वयं विधि निषेध रूप है। तो उसमें जो आश्रव है वो निषेध के स्थान में है, और ज्ञान है वो विधि मैंने आदर के स्थान में है। तो ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं, विज्ञान क्रिया ले लिया, देखो फिर कोई गड़बड़ नहीं करे कि ये ज्ञान स्वभाव की बात होगी, ये त्रिकाली की बात होगी, ऐसा नहीं गड़बड़ करे। इसलिए आचार्य महाराज ने ज्ञान क्रिया ऐसा शब्द लिया है। मैंने परिणाम की बात चल रही है, क्या
परिणाम
की? और भेद विज्ञान किस में होगा? परिणाम में भेद विज्ञान होगा। प्रयोग किस में होगा? परिणाम में प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ बात चलती है वो परिणाम की चलती है, त्रिकाली की चलती नहीं है। ये ध्यान में रखने लायक। ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं करते आचार्य महाराज, ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं करते। ये मुमुक्षु की भूमिका में कराना है ना। आचार्य महाराज ने किसको सामने रखा है? मुमुक्षु जीव को सामने रखा है, अप्रतिबुद्ध को सामने रखा है, ज्ञानी को सामने नहीं रखा है। उसको भेद ज्ञान का प्रयोग कराते हैं। जिसको अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए जो आया है, उसको कहते हैं कि तेरे में ज्ञान क्रिया है, उसका तुझे निषेध करना नहीं है। ये बात है। तो फिर तो तर्क लगाएंगे कोई कि हमारे में तो अल्प ज्ञान है, हमारे में तो मति ज्ञान है, और हमारे में तो इंद्रिय ज्ञान है। तो वो ज्ञान की हम बात नहीं करते, ये सब विशेष ज्ञान है। क्या? अल्पपणा है, इंद्रियपणा है, ये सब मति श्रुत आदि है, वो तो विशेषता है ज्ञान के। ये विशेष ज्ञान की हम बात नहीं करते, हम ज्ञान सामान्य की बात करते हैं। जो ज्ञान क्रिया है वो स्वभाव भूत है। कैसे ज्ञान क्रिया लिया? इंद्रिय ज्ञान स्वभाव भूत नहीं है, ज्ञान का अल्पपणा स्वभाव भूत नहीं है, क्योंकि स्वभाव में तो मर्यादा ही नहीं है, अल्पता कहाँ से होगी। और मति आदि भी स्वभाव भूत नहीं है, मति ज्ञान तो का तो अंत हो जाएगा, श्रुत ज्ञान का भी अंत हो जाएगा। तो ऐसा स्वभाव तो अनादि अनंत है, और केवल ज्ञान तो है ही नहीं, अवधि मनोप्रिय केवल तो है ही नहीं, अवधि मनोप्रिय तो सादी शांत होते हैं, और केवल ज्ञान सादी अनंत होते हैं, लेकिन सादी होती है उसकी। ये सब विशेषताएं नहीं लेनी है, ज्ञान क्रिया स्वभाव भूत है। ये स्वभाव सदृश जो ज्ञान क्रिया है, ज्ञान सामान्य, उसका निषेध नहीं किया जाता। यहां से ही भेद विज्ञान होगा। ऐसा ज्ञान है सो मैं हूं, ऐसे भेद विज्ञान होता है। और ज्ञान के अलावा जो भी दूसरे जाति के परिणाम है वो आश्रव है, वो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे से वो विरुद्ध है। कैसा है? मेरे से विरुद्ध। बहुत देर में कहेंगे किस प्रकार से विरुद्ध है, क्योंकि मेरे में अनाकुल लक्षण सुख है, आश्रव में आकुलता लक्षण दुख है, आश्रव मलिन है, मैं पवित्र हूँ। तीन भेद लिए हैं, और मेरे से वो विरुद्ध जाति का होने से ये विपरीत है। ये तीन भेद से मेरे से वो बिल्कुल जुदा पड़ता है, मेल खाता नहीं है, अवस्था में होते हुए भी मेल खाता नहीं है। हाँ, ज्ञान क्रिया वो ज्ञान सामान्य लेना है, वही ज्ञान क्रिया है, वो परिणाम रूप है ना, इसलिए उसको ज्ञान क्रिया कहा है। मैं
ज्ञान क्रिया जिसके
घट जागे सहज वैरागी, सो अंतर में सहज वैरागी। तो वो वहाँ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, बनारसी दास का ये पद है, वो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि उसको तो अंतर में ज्ञान की क्रिया, ज्ञान की ज्योति जागृत हो गई है, वो शुद्ध परिणति है, ज्ञान धारा है, तो उसको उदासीनता आती है हर जगह, उनको उदास स्वरूप को छोड़ करके हर जगह उनको उदासीनता आती है। समय समय पर होने भी अनादि अनंत है कि नहीं? अबाल गोपाल सबको निरंतर निकालो, 17 निकालो, इसी ग्रंथ में तो है सबके पास। सहानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आखिर का पैराग्राफ टीका में 17-18 गाथा का लास्ट पैराग्राफ। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर, सदा आता है, कोई काल बाकी रखा सदा में कि भूतकाल में नहीं आता था और भविष्य में नहीं आएगा, ऐसा कोई काल लिया नहीं है, ऐसी बात है। ये अनुभूति को ही आत्मा कहते, इसलिए तो वो 50-95 में अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। कितनी गहराई है, एक एक शब्द प्रयोग करने में, वहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया, वहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग किया, 17-18 में अनुभूति शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ भेद ज्ञान कराने में वो ज्ञान क्रिया में अनुभव होने पर भी, वेदन होने पर भी उसको नहीं पकड़ सकता, इसलिए ज्ञान नाम दिया है, वो वेदन को पकड़ नहीं सकता। तो दोनों की जाति को मिलान तो करे, मिंडवनी मिलान करे, साथ में रखकर मिलान करे कि दो अलग जाति के परिणाम है, एक तादात्म सिद्ध आत्म जाति के परिणाम है और एक अनात्म जाति के परिणाम है, जाति दोनों की अलग है। वो बात 17-18 में लिया है, तो अनुभव में आने वाले दो प्रकार के, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के भाव है, जाति अलग अलग है, उसमें आत्मा और अनात्मा ऐसा दो भेद कैसे पाड़ना प्रयोग के पद्धति से, वो बात इस गाथा में कहेंगे।
देवादि देव सिद्धि मंदर भगवान नमो जय ओम।